बाबा आए हैं सत्यों की स्थापना करने के लिए। बाबा कहते हैं मैं आया हूं संसार बदलने के लिए। तो उसका आधार क्या बताया बाबा ने? बाबा कैसे सत्यों की संसार लेकर आ रहा है? तो इसके लिए दुनिया में क्या करते हैं? बाबा कहते हैं तुम लड़ाई से, युद्ध से ये संसार नहीं ला सकते, है ना? तो ये संसार को लाने के लिए बाबा ने कहा, बाबा का स्लोगन क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, है ना? तो खुद को बदलोगे तो जग बदलेगा। तो क्या बदलना है हमको? हम सत्युग में थे तो हमारे सतो प्रधान संस्कार थे, देवताएं गुण थे हमारे, फिर रजोगुणी और फिर तमोगुणी संस्कार बन गए, है ना? तो अभी खुद को बदलना, जो बाबा हमको लक्ष्य देता है, तो क्या लक्ष्य देता है कि बच्चे संस्कार बदलोगे तो संसार परिवर्तन होगा, है ना? तो आज हम समझेंगे कि कैसे हम अपने संस्कारों का संस्कार करें। बाबा कहते हैं संस्कार करो। संस्कार कैसे बनते हैं? जब कोई भी कर्म हम बार बार करते हैं तो पहले तो आदत कहलाती है ना, उसकी प्रवृत्ति बन जाती है ना, बार बार उसी कर्म को करने की। जब लंबे समय तक उस कार्य को हम दोहराते हैं तो वो संस्कार बन जाते हैं, जिससे हमारी भावनाएं भी प्रभावित होती हैं और वो हमारी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व बन जाता है। और फिर जैसे संस्कार होते हैं वापस वैसे ही विचार भी उत्पन्न होना शुरू होता है। तो संस्कार एक बीज के समान है, जब आदत पक्की हो जाती है तो जैसे बीज सूखा होता है ना, कितना भी साल रखो आप, खराब होता नहीं होता। और जब उसको हवा, पानी, जमीन, अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो क्या होता है? अंकुरित हो जाता है। तो हमारे संस्कार भी कुछ ऐसे ही हैं। जैसे ही वो परिस्थितियां आती हैं, वो वातावरण बनता है, वैसी बातें होती हैं तो हम वैसा करने लग जाते हैं जैसे हमारे संस्कार होते हैं। कई बार हमें लगता है ये संस्कार खत्म हो गया, लेकिन बाबा कहते वो दबा हुआ होता है ना, थोड़े टाइम के लिए वो कार्य व्यवहार में आया नहीं है। लेकिन उस संस्कार को बाबा कहते हैं कि मिटाना ही नहीं है सिर्फ, लेकिन उसको जलाना भी होता है। बीज अगर जला हुआ होगा, भून देते हैं, तो उसकी गारंटी है कि अंकुरित नहीं होगा, नहीं तो ये संभावना बनी रहती है कि समय परिस्थिति प्रमाण ये अंकुर निकल सकता है। दुनिया में भी जैसे सांप को मारते हैं ना, तो कहते हैं पता नहीं वापस जिंदा ना हो जाए, तो उसकी भी चिता जला के उसको जला देते हैं, है ना। तो बाबा हमें कौन से संस्कार डालना चाहता है, बाबा के अंदर कौन से संस्कार थे। बाबा हमको कहते हैं बच्चे तुम्हारे संस्कार बहुत रॉयल होने चाहिए, बड़े सतो प्रधान होने चाहिए, सात्विक संस्कार होने चाहिए, जो मूल संस्कार है आत्मा के, आदि और अनादि संस्कार है। बाबा कहते हैं बच्चे उसका सिमरन करो तो वो संस्कार जागृत होंगे। जब ब्रह्मा बाबा के लिए हम देखते हैं तो सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा आपने, एक बार जसोदा माता जी की, माता जी आए तो बाबा के मुख से निकल गया आपकी स्टेप मदर आई है। बाबा को बहुत फील हुआ और फिर बाबा ने उसका प्रायश्चित किया। तो बाबा के संस्कार तो राजा महाराजाओं जैसे थे। निर्मल शांता दादी 3-in-1 में क्या बताते हैं कि बाबा हमको हीरे जवाहरात देता था खेलने के लिए। राजा महाराजाएं भी क्या कहते थे कि भगवान से भूल हो गई है, राजा आपको बनाना था, बना हमको दिया। दादी का अनुभव है ना, पड़ोस में शादी थी और निर्मल शांता दादी अपने कंगन निकाल के दे दिया। तो जब पता पड़ा, पड़ोसी ने आके बताया कि कहीं ऐसा ना सोचे कि भी इन्होंने पुसला के ले लिया या चोरी की, तो जब बाबा को आके बताया तो बाबा ने क्या कहा कि दान दी हुई चीज वापिस नहीं ली जाती है। बाबा ने बाद में समझाया कि पूछ के दिया करो, परंतु वो ऐसे कैसा दिला दिया और यही कहा कि बच्चों के अंदर ये अच्छे संस्कार है, अपने मन से दिया तो ये बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार है। तो ये भी हमने उनके जीवन कहानी में पढ़ा कि बाबा का दोस्त आया था, मतलब व्यापारी था, साथ में बच्चों को लेकर आया था, है ना। उन्होंने हीरे की पुड़ियां उठाकर ले गए, तो बाबा इल्जाम लगा सकता था, व्यापारी को कह सकता था कि भी तुम्हारे बच्चे, गलत शब्द, कि भी चोर है, कह सकता था ना, क्योंकि बिन बताए उठाना तो चोरी ही होती है एक हिसाब से अगर देखा जाए। परंतु बाबा के संस्कार बड़े रॉयल थे। बाबा व्यापारी के घर में गया और क्या कहा कि बच्चों के लिए मिठाई लाना भूल गया था और बच्चों से बड़े युक्ति से वो हीरे वापस ले लिए और उनको समझाया कि भाई बिना पूछे नहीं लिया जाता है ना, आपको चाहिए था तो आपको पूछ के उठाना था, है ना। तो ऐसे ही बाबा के जीवन कहानी में हम देखते हैं हर जगह बाबा ने रॉयल्टी को मेंटेन किया। कभी भी ऐसे नहीं कि समय परिस्थिति विपरीत आई या यहाँ पे भी अगर बेगरी पार्ट आया तो ऐसा नहीं कि बाबा के वो राजाई संस्कार, रॉयल संस्कार खत्म हो गए। यहाँ भी बाबा को संकल्प क्या आता था कि बच्चों को कल जलेबी खिलानी है। ये नहीं कि कुछ है नहीं तो कैसे भी चला लो, ऐसा बाबा का ख्याल नहीं था। दादियां क्या कहती हैं कि बाबा ने हमारी पालना कैसे की, बाबा क्या समझता था, ये मेरे चैतन्य ठाकुर हैं, पिस्ता डाल के दूध पिलाता था, मच्छरदानी में एक भी मच्छर नहीं होने चाहिए, ब्रश में भी पेस्ट लगवा के रखता था। ऐसा घर में कभी किसी ने किया, बहुत प्यार होता ना माता पिता को, कभी ब्रश में पेस्ट लगा के दिया, मच्छरदानी लगाई भी होगी तो उसमें से सारे मच्छर ध्यान से सब निकाला। तो ये बाबा के संस्कार ही थे ना, किसी ने सिखाया थोड़ी था, ओरिजिनल संस्कार थे बाबा के, पालना देने के संस्कार। अभी भी आप देखिए, मधुबन आते हैं तो सब भरपूर होकर जाते हैं, खुश होकर जाते हैं, है ना। जैसे सारी बहुत लंबे समय का जो खालीपन है वो खत्म हो गया। भले 3 दिन के लिए आते हैं, 4 दिन के लिए आते हैं, 2 दिन के लिए आते हैं, कितना भी टाइम के लिए आते हैं, या बार बार आते हैं, तो बार बार आने का मन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां सभी को पालना देने के संस्कार है। आप जितनी बार भी आओ, यहां जो भी रहते हैं वो आपको कैसे अटेंड करते हैं? जैसे पहली बार होता है ना ऐसा, भी आपके गांव में कोई देखने की चीज है, 2 बार 4 बार कोई मेहमान आता है, तो फिर आप क्या करते हो? किसी के साथ भेज देते हो, जाओ भाई मैंने तो बहुत बार देखा है। होता है ऐसा, 2 बार देख लिया, 4 बार देख लिया, फिर इंटरेस्ट आता है आपको? आएगा इंटरेस्ट आपको? आप टाइम देंगे उसमें? नहीं। यहाँ पे कितने ग्रुप आते हैं, पूरे साल में कितने लोग आते हैं? आपको कभी लगा कि इन्होंने बहुत बार स्थान को देखा हुआ है? आपके साथ जाते हैं, हमारे साथ जाते हैं, तो क्या लगता है जैसे ये भी पहली बार ही जा रहे हो? इतना ही उमंग, इतना ही उत्साह, उतना ही प्यार महसूस होता है ना। इसलिए क्या लगता है, यहाँ आने के बाद जाने की दिल नहीं होती है? और ऐसे भी मेहमानों के घर या सगे संबंधियों के घर तो जाते ही है ना। बहुत से ऐसे भी होंगे जो बहुत आवभगत करते हैं, सारे ही तो ऐसे संबंधी नहीं होंगे जो भी उन्हें पसंद ही नहीं आता है कि आप उनके घर में आए। होंगे ना ऐसे भी जो बहुत आपका ध्यान रखते हैं या खातरी करते हैं या आपको टाइम देते हैं, लेकिन क्या आप उनके पास बार बार जाओगे? जाएंगे आप बार बार? क्या फील होगा आपको? भले वो बहुत अपनापन देते हो, फिर भी क्या फील होगा? जैसे उनको हम डिस्टर्ब नहीं करें, है ना, उनको हम तंग नहीं करें। और यहाँ पे ऐसा फील होता है, यहाँ पे तो अधिकार समझते हैं ना, ये भी नहीं देखा, ये भी अनुभव नहीं किया, ये भी बाकी रह गया, और संकल्प करते हैं, और बाबा किसी ना किसी को निमित्त बना के पूरा भी कर देता है, है ना। जैसे मम्मा के लिए भी हम क्या सुनते हैं, मम्मा को भी सिखाना होता था कुछ भी तो क्या करते थे मम्मा भी, है ना, प्यार से सिखाते थे। बड़ी दीदी का मास है, बड़ी दीदी के लिए भी क्या सुनते हैं, पालना के संस्कार थे, है ना। पालना मतलब देने के संस्कार थे, अपना बनाने के संस्कार थे, अपना पन का संस्कार था, ये सब मेरे हैं और आने वाले सबको क्या लगे ये मेरा है, है ना। अभी अपने पास कोई आता है तो क्या लगता है, घरों में क्या सिस्टम हो गया आजकल, आते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, जाने का प्रोग्राम क्या है? होता है ऐसा? नहीं होता है। कितना जल्दी जाएं, कितना भी अपने हो, कोरोना के टाइम पे मालूम पड़ा ना, जब सबको इकट्ठा एक साथ घर में रहना हुआ तब रह पाए? माता पिता को ये लगता था सारा दिन बच्चे बाहर रहते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कब घर में रहेंगे, पति सारा दिन काम पे जाता है, कब घर पे रहेगा। सबके लिए सबने संकल्प किया, और जब सारे इकट्ठे रहे घर में, क्योंकि 1 दिन 2 दिन की बात नहीं थी, बहुत लंबे समय की बात थी, तो जब लंबे समय रहना हुआ तो सबने क्या सोचना चालू किया, कब स्कूल खुले, कब दुकान खुले, कब ये सब बाहर जाए तो हमको चैन की नींद आए। हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? सबने सबको समझा ना, जब लंबे टाइम तक एक साथ रहे तो सबने सबको समझा कि सबके संस्कार कैसे हैं, तो क्या आपस में जब इकट्ठा रहे तो प्रेम बढ़ा? प्रेम बढ़ा क्या? क्या कहेंगे, बढ़ा या घटा? इकट्ठा रहे तो प्रेम बढ़ा, रिजल्ट तो ये कहती है घटा, है ना? क्योंकि तंग आ गए एक दूसरे से, एक दूसरे के संस्कारों से तंग आ गए कि कब, क्योंकि आधा टाइम बाहर जाते आधा टाइम घर में रहते तो सहन हो जाता था, पर सारा दिन ही सामने में इकट्ठा रहे तो फिर उस संस्कारों का टकराव शुरू हो गया, है ना? तो प्रेम बढ़ा नहीं लेकिन घट गया, है ना? ऐसे इतिहास में भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, रॉयल एग्जाम्पल। आज भी बाबा ने याद किया राजा हरिश्चंद्र को। किस लिए याद किया बाबा ने? संस्कार के लिए याद किया, सत्य के संस्कार। विश्वामित्र को सारा राज्य दान में दे दिया, लेकिन दान में देने के बाद क्या होता है, दक्षिणा भी देनी होती है, परीक्षा लेनी थी उनको, तो दक्षिणा में क्या मांग लिया, स्वर्ण मुद्राएं मांग ली। अब राज्य तो दे दिया, अब राजकोष से तो दे नहीं सकते थे, खाली हो गए, तो बच्चे को और पत्नी को भी बेचा, कार्य में लगाया, और खुद को भी चांडाल के हाथ बेचा और शमशान में जो मुर्दा जलाने का कार्य था वो स्वीकार किया। अब कहां राजा और कहां ये कार्य कर सकते हैं, पर उस संस्कार देने के संस्कार, दान के संस्कार और सत्य के संस्कार, जब वो संस्कार बन जाता है तो वहां बहाना नहीं होता है ना, वहां पे बहाने खत्म हो जाते हैं। अगर सुबह उठने के संस्कार पड़ गए तो मन बहाना नहीं बनाएगा कि आज ठंडी है, थकावट है, बहाने तब बनाता है जब वो संस्कार नहीं बने हैं, है ना? समझ के हमने आदत तो डाली है पर वो संस्कार बने नहीं है, तो सत्य के संस्कार, वो दान के संस्कार, कर्तव्य को पालन करने के संस्कार, तभी तो बाबा कहता है कि राजा बनना मासी का घर नहीं है, है ना? प्रजा तो बहुत बनती है, ज्ञान सुना प्रजा में तो आना ही है, पर राजा के संस्कार तो बहुत रॉयल होंगे ना, बहुत अच्छे वाले संस्कार होंगे, और छोटी मोटी बातों में अपने संस्कारों को त्याग दे या छोड़ दे या समझौता कर ले तो वो तो राजा नहीं हो सकता। तो जब बेटे को सांप ने काटा, पत्नी लेकर आई, उसके पास पैसे नहीं थे तो भी आधी साड़ी फाड़ के ली, तो कहते कहानी तो यह है कि भी परीक्षा ली, वो परीक्षा में पास हो गए, अपने जो संस्कार थे वो उन्होंने नहीं छोड़े, तो वापस उनको अपना राज्य भाग्य मिल गया। तो बाबा भी हमको क्या कहते हैं, बच्चे आपके अंदर संस्कार कौन से थे? राजा के संस्कार थे, साधारण आत्मा तो नहीं है हम। बाबा हमको बार बार स्मृति दिलाता है, बच्चे तुम साधारण आत्मा नहीं हो, कोटों में कोई हो, तुम ही वो सतयुग में राज करने वाली आत्माएं हो। तो शुरू में तो हमें विश्वास नहीं हुआ, कहां वो देवी देवता और कहां हम, इतना गैप आ गया कि कोई मिलान ही नहीं उन संस्कारों के। लेकिन बाबा बार बार बोल के हमें बिलीफ दिलाया, जब हमें विश्वास आया तो हमने वैसे संस्कार बनाना स्टार्ट किया, है ना? बिना विश्वास के हम उस संस्कार को जागृत नहीं कर सकते, क्योंकि फेथ सिस्टम काम करता है ना, बिलीफ सिस्टम काम करता है। संस्कार बनने के लिए कर्म चाहिए और कर्म करने के लिए विचार चाहिए, तो पहले तो संकल्प ही होंगे, है ना? संकल्प होगा फिर हम कर्म करेंगे फिर वो संस्कार बनेगा। तो बाबा ने हमें पहले विश्वास दिलाया, बच्चे तुम ही वो सतयुगी आत्मा हो, तुम्हारे अंदर ये देने के संस्कार थे, तुम देवता थे, लेवता बन गए, अब तुम देना शुरू करो, तो वापस उस हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच जाओगे। ऐसे ही इतिहास में भी हम कहानी सुनते हैं ना, पोरस की कहानी सुनी, सिकंदर के साथ युद्ध हुआ तो सिकंदर ने उसे बंदी बना लिया, पूछा कि अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। अब ये नहीं कि वो बंदी हो गया तो उसने सोचा मैं गुलाम हूं, मैं बंदी हूं, पर वो तो राजा था ना। तो क्या जवाब दिया कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। सिकंदर खुश हो गया। तो वो स्मृति कि मैं राजा हूं, बंदी बनने के बाद भी तो स्मृति तो रहनी चाहिए, नहीं तो सर झुका के लटका के नीचे कहता भी मतलब मृत्यु दंड नहीं देना या कुछ और भी तो कह सकता था, परंतु संस्कारों में राजाई थी तब तो व्यवहार में आई ना। संस्कारों के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल शास्त्रों में दिखाते हैं, दानवीर कर्ण के लिए भी सुनी होगी ना, कहते हैं उनकी भी परीक्षा लेनी थी युधिष्ठिर को, जहां जहां शास्त्रों में बताया कि थोड़ा भी अभिमान आया तो उसकी परीक्षा लेके उन्हें रियलाइज कराया गया कि भी आपको ही अभिमान है पर आपसे भी बड़ा कोई और है, दिखाते ना सब शास्त्रों में। तो युधिष्ठिर की भी परीक्षा लेनी थी, वो भी धर्मराज कहलाते थे है ना, कोई भी कहते थे उनके सामने से खाली कोई नहीं जाता था, किसी को भी खाली नहीं भेजते थे। तो परीक्षा लेनी थी उनकी भी, तो इंद्र ने वेश बदला, तो पहले बहुत बारिश की है ना, बहुत बारिश हुई, फिर युधिष्ठिर को कहा कि इतने मन मेरे को सूखी लकड़ियां चाहिए। सुनी होगी ना आप सबने ये किस्सा, सुना है? कि इतने मन मुझे सूखी लकड़ियां चाहिए। युधिष्ठिर ने अपनी सारी जितने भी लोग थे, सेनाएं थी और जो भी उनके काम करने वाले, चारों दिशाओं में भेज दिया कि जाओ और ये याचक, ये जो भी सन्यासी मेरे दर पे आए हैं वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो आप ढूंढ कर लेकर आओ। लेकिन इतनी बारिश हुई थी कि कहीं पे भी जंगल है ना, कई शहर में व्यापारी किसी के पास भी सूखी लकड़ी नहीं थी, सारी लकड़ी पानी से भीग गई थी, बहुत ज्यादा बारिश हुई। तो युधिष्ठिर तो नहीं दे पाए, तो गए कर्ण के पास और सेम बात थी, कर्ण के आगे वही बात रखी कि मुझे इतने मन सूखी लकड़ी चाहिए। उनको पता था कि भाई बाहर तो बारिश हुई है, सूखी लकड़ी तो मिलनी नहीं है। उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और जो फर्नीचर बना हुआ था ना, पलंग चंदन की लकड़ी थी, चंदन की लकड़ी के दरवाजे थे, सब कुछ थे, जो उनकी डिमांड थी सिंपल लकड़ी या चंदन की लकड़ी, दोनों में से कोई एक शर्त थी। तो उन्होंने अपना वाण उठाया और सारे फर्नीचर को तोड़ डाला है ना, पलंग है, दरवाजे हैं, खिड़की है, और जितना उनकी चाहना थी वो पूर्ति कर दी है ना। नहीं, बाबा कहते हैं तुरंत दान महापुण्य, तो संस्कार थे तब तो बुद्धि चली, बुद्धि भी कैसे चली, संस्कार रहे होंगे तब तो बुद्धि चली कि यहां पे भी तो अंदर भी तो लगा हुआ है, बाहर नहीं है तो अंदर से पूर्ति की जा सकती है। इसलिए कहते हैं कवच और कुंडल भी दान में दे दिया। तो ये संस्कार होते हैं जो अपना नहीं देखते हैं, है ना, सामने वाले का देखते हैं, जो बाबा हमको सिखाता। एक मुरली में बाबा ने कहा तो हमारे ब्राह्मणों के संस्कार कौन से होने चाहिए, क्या है हम ब्राह्मणों के संस्कार? सत्युग में तो राजाई संस्कार होंगे, रूलिंग पावर होगी, कंट्रोलिंग पावर होगी, है ना, गरिमामय, सम्मानित, मर्यादित, है ना, व्यवहार, वाणी, बोल। बाबा कहते नारायण को भी मिलना होगा लक्ष्मी से, तो पहले संदेश भिजवाएगा ना कि भी नारायण मिलने आ रहा है, इतनी रॉयल्टी होगी वहां पे। तो संगमयुग के संस्कार कौन से हैं? तो बाबा ने एक मुरली में कहा ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ज्ञान स्मृति में रहे और खुश रहने के संस्कार। बार बार बाबा हमको क्या कहता है, बाबा बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, मेहनत करता हुआ नहीं देख सकता। संगम योग क्या है? सहज मौजूद का योग है, सहज योगी जीवन है। तो बच्चे खुश रहो, खुश रहने के संस्कार डालता है बाबा। क्योंकि कलयुग में अगर हम देखें तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है कि लंबे टाइम तक खुश रह सके। तो बाबा हमको आधार बताता है कि जो प्राप्तियां हुई उसको याद करो, जो मिला है उसको याद करो। क्योंकि संस्कार क्या पड़ गए हैं, जो नहीं मिला उसको याद करने के, है ना। दुखी क्यों हुए हैं दूसरों को देख देख। नहीं कहते हैं कई बार अपने दुख से दुखी इतने नहीं हैं जितना दूसरों के सुख को देखकर दुखी होते हैं। तो ये भी तो एक संस्कार पड़ गया ना, जो बाबा कहते हैं बच्चे दुख लेना नहीं है, दुख देना भी नहीं है तो दुख लेना भी नहीं है। पर ये भी तो आदत पड़ गई कि नहीं पड़ी? पड़ गई ना। अगर ये आदत छूट गई होती तो सबके चेहरे कैसे होते? फिर बाबा को बार बार मुरले में थोड़ी कहना पड़ता, बच्चे खुश हो, खुश रहना है ना। देखिए संस्कार पढ़ना कहां से शुरू होता है, संस्कार कब से शुरू होते हैं? नहीं, किसी भी आत्मा में संस्कार कब से बनते हैं? जब आत्मा गर्भ में होती, इसलिए कहते हैं गर्भ संस्कार। 16 संस्कार दुनिया में माने जाते हैं ना, तो सबसे पहला गर्भाधान संस्कार होता। अभिमन्यु का मिसाल है ना, कि गर्भ में ही सीख लिया था चक्रव्यूह में जाने का। तो जब आत्मा गर्भ में आती है, बहुत है, शरीर का रंग रूप कैसे बनता है, कैसे बनता है? जब आत्मा आती है और वो अपना स्वभाव संस्कार लेकर आते हैं ना, अपना कर्म जब लेकर आती है तब वो बॉडी बनना शुरू होता है और रंग रूप भी उसी प्रमाण बनते हैं। ये बाबा कहता है कौन से माता पिता मिले, जो भी मिलता है उसका आधार क्या होता है? उसका आधार तो हमारे उसी आत्मा के कर्म और संस्कार होते हैं ना। तो एक बच्चा सड़क में भी पैदा होता है, एक महलों में भी पैदा होता, एक कसाई के यहाँ भी पैदा होता है, नहीं होता है? भिखारी के यहाँ भी पैदा होता है, होता है नहीं होता है? बच्चे तो हर जगह ही पैदा होते हैं, पर क्या कहते हैं, जैसा संस्कार है ना। तो हम कोर्स कराते हैं तो हम क्या कहते हैं, कितने प्रकार के संस्कार होते हैं? 5 प्रकार के संस्कार हम नहीं कहते हैं, कुछ संस्कार होते हैं जो पिछले जन्म से लेकर आते हैं। बचपन से ही किसी को रामायण भागवत सुनाने की आदत होती है ना, बहुत अच्छा डांस करते हैं, गीत सुनाते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, तो उस कर्म को इतनी बार किया है कि वो जागृत रूप में इस जन्म में भी आ जाता है। इसलिए कई कहते हैं ना, कई बच्चे पैदा होते हैं तो उनके पेरेंट्स ज्ञान में आ जाते हैं, तो कहते यज्ञ से गई हुई आत्मा है, क्योंकि जैसे ही उसका आना हुआ तो घर का वातावरण चेंज हो गया, खान पान शुद्ध हो गया, योग युक्त वातावरण हो गया। कि जब कई सुनाते हैं ना अनुभव ऐसा कि जब ये आया या आई है ना, तो इसको प्यार लहसुन से तो उल्टियां शुरू हो गई, या जब योग शाम के टाइम पे मेडिटेशन चलता तो कभी बच्चा रोता ही नहीं है और शांति से बैठा रहता है ना। कई कहते हैं मम्मा या दादियों की फोटो देख के वो हंसते हैं, खुश होते हैं, तो क्या लगता है कई बार इमर्ज रूप में तो ज्ञान नहीं है, कई कई बच्चों को तो इमर्ज रूप में भी ज्ञान आ जाता है ना, मालूम पड़ता है, मुरली भी समझ में आती है। लेकिन कई बार बच्चों को इमर्ज ज्ञान वाले संस्कार इमर्ज तो नहीं होते हैं, लेकिन वातावरण वैसा बनता रहता है, होता है, ऐसा नहीं होता है, पिछले जन्म से लेकर आए हैं। एक बार की एक सच्ची बात है, एक ब्राह्मण के घर में एक लड़की पैदा हुई और
ये घटना कहीं की है, सच्ची है, तो बताया था। तो जब थोड़ी बड़ी हुई तो हो ना सुअर का मांस खाने की डिमांड करने लगी। वो ब्राह्मण परिवार वो सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है ना। अब ये बच्ची हमारे घर में ऐसा कोई वातावरण नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ी जब वो बोलना शुरू किया तो उसने अपने पिछले जन्म की बात कहना शुरू की कि फलाने जगह पे भंगी कहते हैं, क्या कहते हैं जो झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, हरिजन कहते हैं, हाँ जो भी कहते हैं, तो नाम सहित मोहल्ला सहित बताया, ये मेरा नाम था, वहां मेरा जन्म था और उसे उस स्वर्ग का मांस खाने का बहुत शौक था। अब ये हैरान हो गए, इनको विश्वास भी नहीं हुए। फिर आखिर सबसे पूछा तो कहा भाई पता तो करो, ये जहाँ का एड्रेस बताती है, जिस स्थान का नाम लेती है। तो लोग गए जाके पता किया, तो पिछला नाम भी बता दे कि ये मेरा नाम था। तब उन्होंने पूछताछ की तो वहां पे उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही है, इस नाम की लड़की थी यहाँ पे और ये काम करते थे और उसको उस चीज का बहुत ज्यादा शौक था। इसलिए बाबा कई बार नहीं कहते हैं अंत मते सो गते, कोई इच्छाएं नहीं रखना, अंत में वो याद आएगा और वो रह गया। तो फिर जैसे इसको इस जन्म में भी याद आया ना, अब जन्म तो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया पर संस्कार कौन से थे, वो पिछले जन्म वाले संस्कार जागृत हो गए, ऐसा ही है ना। तब तो बाबा हमको कहता है मरजीवा बनो, पिछले जन्म के जो भी संस्कार थे, मतलब ज्ञान से पहले के जो भी संस्कार थे उसको भूल जाओ, खत्म करो, ये तुम्हारा नया जन्म है। तो दिनचर्या भी नहीं, सब कुछ नया ना, स्मृति भी नहीं। बाबा कहते हैं मरने वाले को पिछला कुछ भी याद नहीं रहता है। जैसे 16 संस्कारों में एक नामकरण संस्कार भी होता है ना, बाबा ने भी बच्चों को क्या दिया, नए नाम दिए, अर्थ सहित नाम दिया, असर पड़ता है ना। ऐसे नाम थोड़ी रखते हैं, सब ग्रह नक्षत्र सब मिलान करते हैं ना, इस अक्षर का नाम से इसकी तरक्की होगी, ये इसी अक्षर से नाम रखेंगे तो ये सूट करेगा इसको, ऐसे ही तो नहीं रख देते हैं ना। हर चीज को भक्ति मार्ग में भी विधि विधान के साथ करते हुए दिखाया गया है। तो नामकरण संस्कार, तो बाबा ने भी अलौकिक नाम दिए थे। फिर क्या कहा बाबा ने कि नाम के साथ संस्कार तो मैच ही नहीं होते हैं, फिर भी यज्ञ छोड़ के चले गए, तो फिर बाबा ने नाम रखना भी बंद कर दिया। नाम का भी महत्व होता है, कहने का भाव ये है। और संस्कार एक एक चीज के संस्कार बताए ना, सब विधि पूर्वक, और लास्ट में क्या दिखाते हैं, अंतिम संस्कार, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया लेकिन फिर भी विधि विधान के साथ में, है ना। कब तक रहते हैं शमशान में, जब तक ये पक्का नहीं हो जाए कि खोपड़ी भी जल न गई हो, है ना। तो बाबा भी कहता है बच्चे अगर एक बार संस्कार बन जाता है, जैसे सतीश भाई जी की क्लास में भी सुना ना, दधीचि ऋषि ने हड्डियां दी, हड्डियां मतलब संस्कार जो जल्दी खत्म नहीं होते, रस्सी जल जाती है कहते हैं, बल नहीं जाता है ना, वो आदतें जल्दी नहीं छूटती हैं। इसके लिए बाबा ने क्या कहा कि स्व की चेकिंग, अगर कुछ भी हमें छोड़ना है, कोई भी आदत हमें संस्कार बदलना है, तो उसका पहला स्टेप क्या है कि हम खुद समझे कि हमारे अंदर ये संस्कार है। कई बार हम मानते ही नहीं है, कोई कहेंगे ना आपके अंदर ऐसा है तो हम कहते नहीं, वो तो उसने ऐसा किया ना इसलिए, उसने ऐसा बोला ना इसलिए, ये तो ये ऐसा था ना इसलिए, हमको समझ ही नहीं आता है कि मेरे ही संस्कार है। तो पहले हमको ये रियलाइज तो हो कि ये मेरे संस्कार है, ये मुझे चेंज करने हैं। जब तक हम मानेंगे नहीं, बात है चेक करो चेंज करो, अगर हमारी आत्मा या हमारा मन स्वीकार ही नहीं करता है कि ये मेरी अच्छी आदत या संस्कार नहीं है, तो क्या हम उसको खत्म कर सकते हैं? तो सबसे पहले होता है कि हम अपना अंदर का निरीक्षण करें, हम रियलाइज करें, पहचाने अपने अशुद्ध संस्कारों को, तामसिक संस्कारों को। रावण जलाया ना, रावण के संस्कार कौन से दिखाते? ये बातें, रोना, रूठना, टॉन्ट करना, दुनिया में कितना चलता है, ठगी है, झूठ है, चोरी है। आप एक एक इंसान को आप सामने लाइए तो आपको सारे संस्कार ऑटोमेटिक लिस्ट बन जाएगी। कई होते हैं ना, दूसरे को यूज करते हैं, कईयों को उधारी से चलने की आदत होती है, दूसरे को फंसाने की आदत होती है, अपनी गलती दूसरों पे थोपने की आदत होती है। जब जब आपको दुख मिला है उस पॉइंट को आप याद कीजिए तो उसका रीजन क्या रहा है, या तो अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार ना। बगैर लिस्ट निकालेंगे तो कितनी लंबी। ऐसा बैठा यहाँ पे कोई जिसको धोखा नहीं मिला हो, जो कभी फंसे नहीं हो, है ऐसा कभी कोई बैठे यहाँ पे जिसने? तो सामने वाले के जो संस्कार होते हैं ना, जो आदतें होती हैं, वो अपने लपेटे में तो ले लेते हो ना। कईयों के जिद के होते हैं, सिद्ध के होते हैं, बात नहीं मानने के होते हैं, अपने कोई आगे रखने के होते हैं, होते हैं ऐसा कि नहीं होते हैं? तो कई बार हमें भी लगता है कि हम ज्ञानी बन गए तो हमने सब छोड़ दिया, पर धीरे धीरे क्या होता है, जब नया नया ज्ञान मिलता है तो हम सचमुच छोड़ देते हैं, क्योंकि अच्छाई तो अच्छी लगती है। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या होता है, वही रॉयल रूप से यहाँ पे काम करता है, करता नहीं करता, करता है? कभी कभी आपको ऐसा संकल्प आया होगा ना, आप भी रूठे होंगे कभी कि कभी नहीं रूठे, कोई चीज आपको भी बुरी लगी होगी ज्ञान में या सेंटर पे, या लगी नहीं लगी? ब्राह्मणों के, बहुत सारे ब्राह्मणों के बीच में रहे, लगा कि नहीं लगा? तो कौन से संस्कार जागृत होते हैं जो हम दुनिया में करते थे ना, धीरे 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 वही हम यहाँ भी करने लगते हैं। थोड़ा सा रूप बदलता है या थोड़ा सा रॉयल रूप होता है। एक बात याद आती है मेरे को, एक छोटी सी बात है। एक बार एक सेंटर पे भाई जी आते थे, तो आगे आते थे तो आगे ही आके बैठते थे। तो होता है ना भाई, कंटिन्यू आप एक स्थान पे बैठो तो जगह फिक्स ही हो जाती है। तो एक दिन उनका आना नहीं हुआ, दूसरे भाई जी आए जो पीछे बैठते थे। पता नहीं उस दिन उनको क्या संकल्प है, उसी स्थान पे जाके बैठ गए। एक बार तो बहनों को भी संकल्प आया कि भाई, फिर कहा कि ठीक है, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। और ड्रामा ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद वो पहले वाले भ्राता जी पहुंच गए। वो आए, देखा कि मेरी जगह पे कोई बैठा है, मतलब वो भाई जी बैठे हैं। खड़े होके वहां पे जाके कहते, मेरी जगह पे तुम कैसे बैठ गए? वो भाई जी भी बहुत मस्त वाले थे, उन्होंने कहा, तेरी जगह कहां से हुई, नाम लिखा है क्या? शुरू हो गया दोनों का। बात कितनी सी थी, जगह की थी, ठीक है? और कहां तक पहुंची आपको पता है? शर्त रखी कि ये आप फाइनल करिए बहन जी, अगर ये सुबह आएंगे तो मैं शाम को आऊंगा, और ये नहीं तो इनको बोलो मैं सुबह आऊं तो ये शाम को आए, दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे। जिद होती है ना कि अब आऊं भी तो बैठू तो उसी जगह पे बैठू। ये हालत हो गई। तो दुनिया में तो छोड़ा ही होगा जिद करना, नहीं छोड़ा होगा ज्ञान में आए तो छोड़ा ही होगा, पर वापिस यहाँ पे क्या हो गया? दुनिया में हम नहीं देखते हैं, ड्राइवर क्लैश होता है तो एक घंटा टाइम खराब करते हैं वहां पे ना। तो हमने लेट गो करना सीख लिया, लेकिन यहां जब कोई कुछ गड़बड़ होती है तो हम क्या कहते हैं, ये तो ज्ञानी है ना, तुम लेट गो कर पाते हैं? कर पाते हैं? वो तो अज्ञानी है इसलिए सब सहन हो जाता है, वो कुछ भी बोले है ना, क्या भी करे, वो सब सहन हो जाता है, क्योंकि बुद्धि में क्या फिट हो गया वो तो। पर ऐसा बोलना भी चाहिए क्या? बाबा ने कहा है कि ये भी तो एक संस्कार है ना, एक फैमिली के साथ ऐसे हुआ, माता थे उसकी बेटी थी। तो जब देखो तो कोशिश तो सभी करते ना ज्ञान में आए। अब ज्ञान में कोई नहीं आया तो इसका ये तो मतलब नहीं होता है कि वो खराब है। खराब है क्या वो? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये भी हमारे गलत संस्कार है ना। दुनिया में भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत रॉयल संस्कार होते हैं जो कई बार ज्ञानियों में नहीं होते हैं। और कई लोग तो बोल ही देते हैं कि हम भी सोचे थे हम ज्ञान में आएंगे, पर ये हमारी माता जी आती है ना, फिर घर में जो होता है ना वो देखने के बाद हमने तो कान पकड़ लिया, हम कभी नहीं आएंगे। होता है ना ऐसा कि नहीं होता है? होता है। हमारे पास तो कंप्लेन आती है तो हमको समझ में आता, स्पष्ट बोलते हैं क्योंकि उनको किस चीज का डर है, क्योंकि उनको तो लगता है ना कि भाई सबसे पहली बात तो यही होगी कि ये बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, है ना, सहयोग की भावना रहेगी। बाबा जिसको कहते हैं भाई अवगुण नहीं देखना, गुण देखने के संस्कार बनाओ। तो संस्कार बनाने की तो आदत डालने वाली बात है ना, तो सामने से खुला खुला बोल देते हैं। तो उनको भी बात बात में यही आदत थी, अब उनको ये ध्यान नहीं रहा, अरे ये तो अज्ञानी, अरे दीदी आप क्या जानो, ये तो अज्ञानी है। सुन के तो कान को खटकता था, ऐसे कैसे बोलते हैं। अब ध्यान रहा नहीं उनको, किसके आगे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनके ही सगे संबंधी बैठे हुए थे, उनके आगे बोल दिया, आदत पड़ी होती है ना। और फिर वो बात वहीं रुकने वाली थी क्या, है ना, वो रुकी नहीं वहां पे, वहां तक पहुंच गई, आपस में इतना कलह बढ़ गया। मना करने पर भी कई बार होता ना, अरे नहीं, होता है ना संस्कार, वो ईगो वाले संस्कार की, अगर हमें तीनों कालों का तीनों लोकों का ज्ञान मिल गया तो हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, ऐसा है क्या? ऐसा बाबा ने तो नहीं सिखाया ना। तो आखिर छोड़ने की नौबत आ गई। बात कितनी सी थी, बाबा तो सिखाता रेस्पेक्ट, तो है ना, आप मान रखो, सम्मान रखो। दुनिया का एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। दुनिया में भी कहीं कहीं जगह पे सिर्फ पैसों को मान नहीं देते पर संस्कारों को भी मान देते। एक होटल की बात बताऊं मैं आपको, पढ़ा था मैंने, उदयपुर में है लीला होटल। तो उन्होंने अपने सारे जो मैनेजर्स और सभी को सिखाया हुआ है कि जो भी आते हैं तो आप उनका मतलब सुख का ध्यान रखा करो। तो जो भी एक बार की बात है, गेस्ट आई जो दो तीन दिन रुकी वहां पे, तो उसको बाहर जाना था, वो अपने इष्ट की मूर्ति अपने साथ रखा करती थी। तो बाहर जाना था, कैब की गाड़ी आ गई थी तो हड़बड़े में नीचे उतरी, तो नीचे रखा किसी टेबल पे और वो मूर्ति ले जाना भूल गई। तो जब वो लौट के आई तो उसने देखा कि नीचे लाल कपड़ा बिछा के मूर्ति को रखा हुआ है और साथ में फूल और फूल मालाओं से उसको सजाया हुआ है ना, जैसे चरणों में फूल मालाएं डालते हैं। तो अब आप बताइए कि जब भी वो आएगी तो कौन से होटल में रुकना चाहेंगे? वो उनकी श्रद्धा का मान रखा, ऐसे ही पड़ा रह सकता था ना, पर सम्मान की बात आती है ना, रिस्पेक्ट की बात आती है, जो बाबा हमको सिखाता है ना बच्चे, इंसान को सबसे पहले इंसान बनने वाले वो सम्मान तो आप दो। इसे बहुत रॉयल संस्कार है जो बाबा हमको सिखाता है ना, बहुत ऊंची क्वालिटी के संस्कार बाबा हमको सिखाता है ना। साधारण संस्कारों की तो बात ही नहीं। साधारण संस्कार तो क्या है, किसी ने मान लीजिए क्रिटिसाइज कर दिया तो गुस्सा हो गए। जब कभी हमको लंबी लाइन में खड़ा होना होता है तो साधारण संस्कार वाला तो क्या करेगा, शिकायत करेगा, है ना, अधीर हो जाएगा। पर बाबा के बच्चे जब पेशेंस रखते हैं तो कई बार होता ना, हमारा काम आगे कर दो, आगे कर दो। जैसे हम ज्ञान में चलते हैं या सेवा करते हैं, जैसे हमारा अधिकार है कि हर जगह पे हमें पहले चांस दिया जाए, होता है ना कई बार ऐसा। तो एक बार बैंक मैनेजर ने कहा कि आपके वो भाई जी आए थे ना, लाइन में शांति से खड़े थे, अपने नंबर का इंतजार किया, तो संस्कार से क्या हो गया, सेवा हो गई, है ना। तो ऐसी एक बार की और बात है, ये सम्मान वाली बात है ना, होटल की बात है, होटल में छोटे छोटे सब पाउचेस रखे होते हैं ना, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उठा के ले जाते हैं। तो जब पेमेंट करने की बात आई, तो जब अपना पर्स खोला एक माता ने, तो सारी चीजें टेबल पे गिर गई। तो वहां पे भी ये बात सिखाई हुई थी कि जो अपने क्लाइंट है, समझे गेस्ट है, जो भी आते हैं रहने के लिए, तो उनका सम्मान का ध्यान रखा जाए। अदरवाइज दूसरी जगह तो क्या होता है, इसको भी चोरी मानते हैं, है ना। तो उन्होंने एक छोटा सा बैग निकाल के दिया कि आपकी बैग छोटी है, आप इसमें रख लीजिए, और साथ में एक नया जो छोटे छोटे पैक होते हैं ना, नया पैक का पूरा सेट बना के दिया कि आपको ये चीज इतनी पसंद है तो जरूर आप इसको यूज कीजिए। ये होती है रेस्पेक्ट, है ना। तो कई बार क्या होता है, हम देखते हैं बच्चा भी कितना जवाब देता है, सामना करता है ना, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, होता है। एक बार एक एग्जांपल और मेरे को याद आ रहा है, स्कूल की बात है। स्कूल ऐसी थी जहां पे सारे ज्यादातर पैसे वालों के घर के बच्चे पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे स्कूल के रूल्स ऐसे हुए कि भी सब आ सकते हैं। तो एक बड़े घर का बच्चा था, उसकी घड़ी गुम हो गई, कीमती घड़ी थी। उसने सर को जाके बोला, अभी और कोई उपाय नहीं था क्योंकि अब बच्चे घर चले जाएंगे तो कहाँ ढूंढेंगे। तो उसने सोचा कि सबसे बेस्ट तरीका है कि चेकिंग कर ली जाए। तो उन्होंने क्या किया कि सारे बच्चों की आंखों में पट्टी बांध दी, ताकि बच्चों को ये नहीं पता पड़े कि किसने चोरी की है। सब लाइन से खड़े हो गए, तो एक 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 एक, एक पास होते गए, और जिस बच्चे के बैग में थी, जिसने चुराया था, वो पकड़ में आ गया। जिसके बैग से घड़ी निकली तो समझ में आ गया, तो घड़ी ली और जिस बच्चे को थी उसको दे दिया गया। अब जिस बच्चे ने उठाई थी, उसके अंदर तो दिल की धड़कन तो बहुत तेज थी, पर किसी ने कुछ कहा ही नहीं, ना सर ने डांटा ना कुछ कहा। तो एक दिन निकल गया, दो दिन निकल गया, तीन दिन निकल गया। फिर उसने सर को पूछा कि सर, उस दिन उस जिस भी बच्चे ने चोरी की थी, आपने उसको कुछ बोला नहीं, डांटा नहीं? तो उसने कहा, सर ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं नहीं चाहता था कि उसके प्रति मेरी भावनाएं खत्म हो, इसलिए उस दिन मैंने भी अपने आंखों में पट्टी बांध ली थी। मुझे भी ये पता ही नहीं कि किस बच्चे ने चुराई थी ना। उस बच्चे ने कसम खाई कि आज के बाद मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, है ना। तो मम्मा का पुरुषार्थ भी क्या था, पुरुषार्थ का अर्थ ही मम्मा ये बताती थी, एक गलती हो जाए तो उसको दोबारा नहीं करती थी। यही था ना मम्मा का पुरुषार्थ, एक बार इशारा मिला तब तो बाबा कहते ना, जो इशारों से समझे वो देवता, जो कहने पर मान जाए वो मनुष्य, और जो कहने पर भी न माने, तो आप सोचिए वो संस्कार कितने कड़े होते होंगे, है ना। थी वरदा बार बार अटेंशन दिलाते हैं, और कहने पर कई बार क्या होता है, चिढ़ जाते हैं, उसी काम को क्या करेंगे और ज्यादा करते हैं। होता है ना ऐसा, होता है नहीं होता है ऐसा, जिस बात से आपको चिढ़ोगे उसी बात से चिढ़ाएंगे, जो आपको पसंद नहीं होगा वही करेंगे। तो बाबा हमारे सूक्ष्म संस्कार भी बनाते हैं ना, इकोनॉमी के संस्कार नहीं, बाबा कहते हैं बिजली बचाओ, पानी बचाओ, व्यर्थ संकल्प भी न जाए। कईयों को समय खराब करने की आदत होती है, बाबा ने हमको समय को भी सफल करना सिखाया है ना, हर चीज को, हर बात को समाधान करना सिखाया। नहीं बात है, सरल स्वभाव हो। दादी जानकी जी की बात याद आती है, दादी ने कहा, अगर हम कहीं उपस्थित हैं और अगर वहां बात बिगड़ रही है, तो मेरा प्रेजेंट किस काम का। हम वहां पे हैं तो फिर मेरा काम क्या हुआ, मैं उसको पहले संभालूं, है ना। वो चीज, वो बात बिगड़नी नहीं चाहिए, है तो बाबा का यज्ञ ना, बाबा की सेवा, बाबा की चीजें, बाबा की बातें हैं। कुछ भी अगर बाबा के घर का नुकसान हो रहा है, बाबा पता है ना आपको, सब्जियां साफ होती थी फेंक देते थे, बाबा जाता था इतनी सब्जी उसमें से छांट के लाता था कि दो तीन जन की सब्जी तो बन जाएगी ना, पत्ते खराब है, ये है वो है, तो बच्चे तो डाल देते थे, सुना है ना ऐसा। तो बाबा सिखाता था कि कैसे एक एक छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है ना। तो बाबा हमारे रॉयल संस्कार को जागृत करना चाहता है, तो पुराने संस्कार को हम खत्म कैसे कर। जब तक हम कोई नई आदत नहीं डालते हैं ना, तब तक पुरानी चीज खत्म नहीं होती है ना। इसलिए बाबा हमको सत्ययुगी संस्कार को बार बार याद करने के लिए कहता है ना। तो पहले हमें खुद को रियलाइज करना होता है, खुद की चेकिंग करके हमें समझना है कि मेरे कौन कौन से संस्कार हैं। अच्छे संस्कार होंगे तो सुख देंगे, हम लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे, खुश रहेंगे। मान लीजिए आपने किसी के साथ बेफालतू टकराया, तो उसके बाद क्या होता है, खुश रहते हैं, अच्छा लगता है। तो समझ में तो आता ना भी कौन से वाले संस्कार हैं। नहीं कहते हम इनके साथ रह नहीं सकते, क्यों नहीं रह सकते, क्यों नहीं एडजस्ट कर सकते, ये कमरा ऐसा है, ये ऐसा है ना, ये तो ऐसे नहीं। दादियां सिखाते थे आप जिस कमरे से बाहर निकलो उस चादर में सल भी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने यूज किया या हर चीज वापस उसको इतना व्यवस्थित कर दो कि उस रूम को भी ये फील हो कि कोई राजा रह के गया है, नहीं, वो भी अपना भाग्य समझे कि ऐसा मेहमान तो बार बार आना चाहिए, जो अव्यवस्थित को भी व्यवस्थित करते। तो पहले हमको रियलाइज करना है, फिर उसको लक्ष्य बनाना है कि इस संस्कार को मुझे खत्म करना, तो उससे क्या क्या नुकसान हुआ उसको सामने लेकर आए। जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि इस बात से ये मेरा नुकसान हुआ है, तब तक हमारा दिल मानेगा कि मुझे इसको चेंज करना है ना। तो जहां हमको टकराव हुआ, जहां हमें दुख हुआ, जहां हमें लग रहा है, हम फ्रेंड्स के साथ अच्छा चला पाते हैं, घर में नहीं चला पाते हैं, क्यों भाई। सारे फ्रेंड, कई लोग कहते हैं भाई इनके सारे फ्रेंड्स कहते हैं बहुत अच्छे, घर वाले कहते हैं अच्छे नहीं है। कारण क्या, वहां मन से माइंड को प्रिपेयर किया, सारा हमारा मेंटल प्रोग्रामिंग के ऊपर ही तो है। मुरली क्या करते हैं, मेंटल प्रोग्रामिंग तो करते ना हमारे, वहां से माइंड से स्वीकार कर लिया कि इनके साथ अच्छे होके चलना है, ये काम आएंगे, तो एडजस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, त्याग करते हैं, एडजस्ट करते हैं, उनके लिए उनके साथ कहीं जाएंगे तो कुछ बना के भी ले जाएंगे, खाली जाएंगे नहीं जाएंगे ना। पर घर में तो क्या है, कोई देखता नहीं है ना, किसके पास घर वाले जाके कंप्लेन करेंगे, वो तो एक सर्कल है ना, बातें बन जाएगी, बातें गोल गोल घूमेंगी, तो वहां तो अपना इमेज का रेपुटेशन का एक रहता है ना। अभी घर में घर वाले कहां जाएंगे, आप जानो और मैं जानू, नहीं क्या कोई और जानता ही नहीं है, तो जरूरत ही नहीं है ना, ऐसा ही होता है ना, इमेज रेपुटेशन की तो जरूरत ही नहीं है, घर की बात घर के अंदर रही तो मर्जी हो सो करो, होता है ना ऐसा, नहीं तो क्यों नहीं बनेगी। बाबा ने तो कहा शुभ भावना दो, ये भी हिसाब किताब है, लेकिन भोगना नहीं समझो, परंतु आप शुभ भावना से उन सब चीजों को पार करोगे, आप सहयोग की भावना रखोगे तो ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो पहले हमको समझना है, उनसे हुआ जो नुकसान है उसको भी सामने लाना है, तो उसको लक्ष्य रखना है। इतना जल्दी नहीं खत्म होता है, दबता है लेकिन खत्म नहीं होता है ना। अगर चपरासी ने गड़बड़ी की तो फटाक से रिएक्शन हो जाएगा, पर बॉस ने किया तो आप तो सोचेंगे ना, मेरे को तो गुस्सा नहीं है, बॉस तो रोज डांटता है, मेरे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन जब चपरासी के बाद बात आई तो समझ में आया ना, गुस्सा था या नहीं था, रियलाइज हुआ ना, उस समय आया कहां से, आया था ही नहीं ना। आप तो कहते रोज हम डांट खा रहे थे, बॉस रोज डांटता है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हमारे, हम इसी कान से सुनते हैं उसी कान से निकाल देते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता है कुछ। अब फर्क कैसे पड़ा, संस्कार तो अंदर थे, वहां पे मौका नहीं था कि सामने वाला आपसे ज्यादा पावरफुल है ना, वो सुनने वाला नहीं है, है ना। तो फिर बाबा से योग लेकर, योग की शक्तियों से अपने संस्कारों को खत्म करना होता है ना। तो जब हम अपने संस्कारों का संस्कार करेंगे तो सतयुगी संस्कार का आनंद सुख या इसी जीवन में जो बाबा कहता है ना स्वर्ग का सुख वो अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।